लिए रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड द्वारा विश्वास मत प्राप्त करने के दिन यानी आषाढ़ 28 गते शुक्रवार बैठक में अनिवार्य उपस्थित होने का अपने सांसदों को नेकपा माओवादी केंद्र ने किया निर्देश। विश्वास मत प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान करने का अपने सांसदों को नेकपा एमआलए ने किया निर्देश। और दक्षिणी गजा के एक स्कूल पर इजरायली सेना के हमले में कम से कम 29 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड द्वारा प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत लेने के दौरान अपने सांसदों को अनिवार्य उपस्थित होने का नेकपा माओवादी केंद्र ने निर्देश किया है। माओवादी केंद्र संसदीय दल की आज सिंह दरबार में हुई बैठक ने परसों यानी आषाढ़ 28 गते शुक्रवार प्रधानमंत्री प्रचंड द्वारा विश्वास मत लेने के दिन प्रतिनिधि सभा की बैठक में अनिवार्य उपस्थित होने का व्हिप जारी करने का निर्णय किया है। ये जानकारी माओवादी केंद्र के मुख्य सचेतक राज पांडे ने दी। बैठक ने प्रधानमंत्री प्रचंड को विश्वास मत देने, संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दल तथा स्वतंत्र सांसदों से संवाद करने का निर्णय किया है। इसी तरह बैठक ने देश के विभिन्न स्थानों में बाढ़, भूस्खलन और डूबान से प्रभावितों के उद्धार, राहत और पुनर्स्थापन के लिए सक्रिय रहने का भी सांसदों को निर्देश किया। नेकपा एमआलए के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा है कि चूंकि संविधान एक गतिशील चीज है, इसलिए इसमें समय के अनुसार संशोधन किया जाना चाहिए। आज ललितपुर के चैसल स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित सचिवालय बैठक में अध्यक्ष ओली ने कहा कि एमआलए भ्रष्टाचार को रोकने, विकास और लोगों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाने जा रही है। बैठक में अध्यक्ष ओली ने विश्वास जताया कि अगर एमआलए और कांग्रेस एक साथ आते हैं तो प्रदेश और संघ में स्थिरता आएगी। एमआलए के मुताबिक बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा के अलावा नई सरकार के गठन, पिछले साल में कामकाज की समीक्षा और इस साल की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई। इसी तरह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमआलए ने पार्टी के सभी प्रतिनिधि सभा सदस्यों को इसी आषाढ़ 28 गते बुलाई गई प्रतिनिधि सभा बैठक में अनिवार्य उपस्थित होने और प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विश्वास मत प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान करने का व्हिप जारी किया है। ये जानकारी प्रमुख सचेतक महेश कुमार बरतौला ने दी। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा ने कहा है कि संसद में दो प्रमुख दल कांग्रेस और एमआलए एक स्थिर सरकार बनाने के उद्देश्य से एक साथ खड़े हैं। आज झापा में आयोजित एक कार्यक्रम में महामंत्री शर्मा ने कहा कि देश में अस्थिरता को रोकने के लिए सत्ता परिवर्तन पर सहमत हुए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि दोनों दलों के समझौते के अनुसार एमआलए केपी शर्मा ओली नई सरकार का नेतृत्व करेंगे। सांसदों ने काठमांडू घाटी में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए प्रभावी योजना बनाने का संबंधित निकायों से आग्रह किया है। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत विकास, आर्थिक मामला और सुशासन समिति की आज हुई बैठक में सांसदों ने कहा कि मेलमची पेयजल आपूर्ति में बाढ़ के कारण होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी योजना तैयार की जानी चाहिए। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14# # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सांसदों ने कहा है कि अगर दलित वार्ड सदस्य की जगह दलित नहीं है तो उनके स्थान पर अन्य समावेशी समूह के लोगों को रखना आपत्तिजनक है। आज सिंह दरबार में हुई प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की महिला एवं सामाजिक मामलों की समिति की बैठक में सांसदों ने कहा कि छुआछूत जैसे भेदभाव को दूर करने के लिए आम सोच में बदलाव होना चाहिए और दलित समुदाय के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। नेपाली कांग्रेस ने आज एक विज्ञप्ति जारी कर देश भर आई बाढ़, भूस्खलन, लगायत आपदाओं से हुई मानवीय और भौतिक क्षति पर दुख व्यक्त किया है। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ व भूस्खलन जैसी घटनाओं में देश भर में अब तक 83 लोगों की मौत हो गई है, वहीं अब तक 2 पुरुष और 3 महिलाएं समेत कुल 5 लोग लापता है, जिनकी तलाश जारी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पास एक सड़क दुर्घटना में बस में सवार 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हुए हैं। हादसा तब हुआ जब एक स्लीपर बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर उन्नाव से गुजर रही थी। ये बस दूध के टैंकर से टकरा गई। हादसा उन्नाव के गड़ा गांव के पास एक्सप्रेस वे के 248 नंबर माइलस्टोन के करीब हुआ। पुलिस के मुताबिक हादसा टैंकर को ओवरटेक करने के दौरान हुआ। टैंकर से टक्कर के बाद बस एक्सप्रेस वे पर पलट गई, जिसकी वजह से बस में सवार कई यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार स्लीपर बस बिहार के सीतामढ़ी से मोतिहारी होते हुए दिल्ली जा रही थी। हादसे के कारणों का स्पष्ट तौर पर अभी तक पता नहीं चल सका है। घायलों को उन्नाव की बगरमऊ सीएचसी में इलाज के लिए भेजा गया है। गंभीर रूप से घायल कुछ यात्रियों को इलाज के लिए लखनऊ भेजा जा रहा है। हादसे में मरने वाले यात्रियों में 14 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल है। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2,00,000 रूपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है। दक्षिणी गजा में एक स्कूल के बाहर विस्थापित लोगों के कैंप पर हुए इजरायली हमले में कम से कम 29 लोग मारे गए हैं। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि खान यूनिस के पूरब में स्थित अबसाना अल कबीरा कस्बे में अल अवादा स्कूल के गेट पर हवाई हमला हुआ। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने हमास के मिलिट्री विंग के टेररिस्ट को निशाना बनाने के लिए स्टिक मार करने वाले हथियारों को इस्तेमाल किया था। सेना ने दावा किया है कि संदिग्धों ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले में हिस्सा लिया था। इजरायली सेना ने कहा है कि इस हमले में अल आवदा स्कूल के पास विस्थापित लोगों के कैंप में नागरिकों के हताहत होने की खबरों की जांच हो रही है। एक सप्ताह पहले ही इजरायली सेना ने अबसाना अल कबीरा और खान यूनिस के पूरब के इलाकों को खाली करने का आदेश दिया था। वाशिंगटन डीसी में आयोजित अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य गुट नेटो की बैठक में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को दर्जनों एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात कही है। नेटो की बैठक में अपने भाषण में बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और 4 अन्य पश्चिमी देश एयर डिफेंस सिस्टम देंगे तो आने वाले महीनों में यूक्रेन को दे दिए जाएंगे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस पैकेज में पेट्रोलियम मिसाइल सिस्टम, अन्य ट्रैकिकल एयर डिफेंस सिस्टम और इसके पार्ट्स शामिल होंगे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड द्वारा विश्वास मत प्राप्त करने के दिन यानी आषाढ़ 28 गते शुक्रवार बैठक में अनिवार्य उपस्थित होने का अपने सांसदों को नेकपा माओवादी केंद्र ने किया निर्देश। विश्वास मत प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान करने का अपने सांसदों को नेकपा एमाले ने किया निर्देश। और दक्षिणी गजा के एक स्कूल पर इजरायली सेना के हमले में कम से कम हुई 29 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।